सुदीजनों देवियों, सत्यार्थ प्रकाश, जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन ए लाइट ऑफ ट्रूथ, आप चाहें तो लाइब्रेरी से या बुक स्टोर से भी लेकर के पढ़ सकते हैं। अभी सातवें चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं। ये सातवें चैप्टर में बेसिकली ईश्वर के बारे में अलग अलग जो डायमेंशन है उसके बारे में डिस्कशन है, चर्चा है। हमारे जो शास्त्रों में किस तरह ईश्वर की विचार, ईश्वर के बारे में विचार है, और लोगों में किस तरह के परसेप्शंस हैं, या जो लेटर पीरियड में लिखे गए भक्ति साहित्यों में किस तरह ईश्वर को प्रस्तुत किया गया है, हम किस तरह उसको जानते हैं, और हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों के अनुभव के द्वारा जो जो जाना गया वो ईश्वर कैसा है, उसके बारे में, उसके अलग अलग पक्षों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं काफी दिनों से। ईश्वर क्या है, उसकी प्रार्थना करने से क्या लाभ है, वो कहाँ रहता है, क्या क्या एक्टिविटीज करता है, कैसा है। तो आज उस प्रसंग में प्रश्न ये है, ये क्वेश्चन आंसर स्टाइल में है। ये एक प्राचीन भारतीय परंपरा है, इसे हम पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के रूप में कोई भी शास्त्र में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो 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 मिसपरसेप्शन है उसका उल्टा आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में। हर चीज का एक डिबेट होता है। कभी भी कोई आचार्य या ऋषि कोई ग्रंथ लिखता है, उसको अगर अपने पूर्वजों के किसी बात पर सहमति नहीं है तो उसको पूर्व पक्ष के रूप में, क्वेश्चन के रूप में सामने रखता है। फिर उसको अगर उसकी सहमति नहीं है तो उसको रिजेक्ट करता है, उसको खंडन बोलते हैं। फिर अपनी बात को वो रीजनिंग के साथ, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ रखता है, उसको मंडन कहते हैं। तो पूरी प्रक्रिया को खंडन मंडन प्रक्रिया कहते हैं। ये पूरे हिंदू धर्म के शास्त्रों की ये एक पिक्युलरिटी रही है, जो कि कॉमन हिंदू, जो आज के हिंदू हैं, उसके सोच के बिल्कुल उल्टा है। दुनिया समझती है कि जो भारतीय लोग हैं वो ज्यादातर ब्लाइंड बिलीवर हैं, वो बड़े गुरुओं को बहुत मानते हैं, वो हर किसी को मान जाते हैं। पर इसका उल्टा जो हमारा कल्चर हमें सिखाया है, मतलब मानना अलग बात है, किसी चीज को विदाउट एनी डिलिबरेशन मानने की कभी हमारी परंपरा रही नहीं है। अपने दिमाग को यूज करने के लिए कभी हमारे ऋषि मुनि साधु हमारे शास्त्रों ने नहीं रोका है, और इसके हजारों लाखों उदाहरण आपको मिलेंगे, कैसे शिष्य ही अपने गुरुओं के, गुरु के जीते जी ही उनके सारे विचारों को खंडन करता है, उनके सामने अपने विचार रखता है। ये स्वतंत्रता हमारे संस्कृति में थी, जो आज के हमारे भारतीय लोगों को पता नहीं है, और उसका परिणाम है कि वो खुद भी एक तरह के ब्लाइंड आईज होकर के रहते हैं, और वो समझते हैं कि हमारे ट्रेडिशन भी ऐसा ही रहा है। कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, तो उन्होंने इस पर एक किताब लिखा है, वेस्टर्न लोगों के इस माइंडसेट पर। वस्तुतः हम वेस्टर्न लोग जो बोलते हैं वो इनडायरेक्टली एजुकेटेड इंडियन लोगों के लिए वो लागू होता है। वेस्टर्न लोग तो कम हमारे बारे में खराब भावना रखते हैं, ये ज्यादा खराब भावना ये एजुकेटेड इंडियन लोग रखते हैं इंडिया के बारे में। तो उन्होंने एक बुक लिखा है आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, जब मौका मिले जरूर पढ़िएगा कि कैसे हमारे यहाँ आर्गुमेंट की परंपरा रही है, सत्य को खोजने की परंपरा रही है, सत्य को जानने की परंपरा रही है, और वो वेद से लेकर के हजारों हजारों सालों तक चली, और बाद में वो जिसको हम सो कॉल्ड मॉडर्न प्रोग्रेसिव इंडिया कहते हैं, वो कैसे वो ज्यादा बिलीवर बन गया इंस्टीड ऑफ आर्गुमेंटेटिव। तो वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस बैकग्राउंड के साथ चलते हैं। स्वामी दयानंद जी की वही जो प्राचीन भारतीय परंपरा है उसको फॉलो करते हुए वो क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से बातों को सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो आज का प्रश्न है, डज गॉड इनकार्नेट और नॉट, क्या ईश्वर अवतार लेता है या नहीं। अवतार शब्द अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है सज्जन देवियों। अवतरति का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर आना, उसी को अवतार कहते हैं। मतलब कोई चीज ऊपर है, जब वो नीचे गिरता है तो संस्कृत में उसको कहते हैं अवतरति। तो जो अवतरति, जो कृत होता है उसको अवतार कहते हैं, जो ऊपर से नीचे आता है। इसका मतलब कोई चीज ऊपर है जो किसी कारण से नीचे आता है। जब हम अवतार को मानते हैं, इसका मतलब हिंदू धर्म का जो बेसिक कंसेप्ट है कि ईश्वर सब जगह है, वो कंसेप्ट सबसे पहले ही उसके बारे में क्वेश्चन उठेगा कि कोई ईश्वर या भगवान जो ऊपर है वो नीचे की ओर आता है, और इसीलिए उसको अवतार कहते हैं। ध्यान रखिए, ऊपर रहने वाले ईश्वर सिर्फ अब्राहमिक रिलीजियन में माने जाते हैं। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुदाइज्म में ईश्वर ऊपर रहता है। किसी भी, इवन हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो, किसी भी ईस्टर्न धर्म में ईश्वर ऊपर रहने का कंसेप्ट नहीं, शास्त्रीय दृष्टि से नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, हम जिसको अपना बड़ा, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत लेकर चलते हैं, वो कहां से इन्फ्लुएंस्ड होता है और हम कैसे लेकर चलते हैं। तो क्या ईश्वर अवतार लेता है? नेचुरली मेरे एटीट्यूड से आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या होगा। नहीं, गॉड इज अनबर्न एंड एज इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक दो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये एक छोटा सा यजुर्वेद का एग्जाम्पल है। अज एक अपाद इज अनबर्न अज एंड अनडिविजिबल। ईशावासी उपनिषद में आप पढ़ते हैं, सपरियगा चुक्रम कायम अब्रणम शुद्धम अश्न शुद्धम अपाप विद्धम। सपरियगात, ही ओवरस्पेड साल, ही इज प्योर एंड फॉर्मलेस। इट्स क्लियर फ्रॉम दिस कोटेशंस दैट गॉड इज नेवर बर्न। पहले शास्त्र प्रमाण है, ये एक दो प्रमाण है। वैसे सारे आप वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, कोई भी आप प्राचीन शास्त्र उठाइए, आपको कहीं भी गलती से भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इनडायरेक्टली भी कोई आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा कि ईश्वर जन्म लेता है। प्राचीन शास्त्रों में, पुराणों को, कुछ खास पुराणों को छोड़ के, जो मोस्ट ऑफ पुराणा रिटन 2000 to 1000 years before, दो 1000 से 2000 साल के अंदर ज्यादातर पुराण लिखे गए हैं, और उनको छोड़ करके आपको कहीं ये प्रूफ नहीं मिलेगा कि ईश्वर कभी जन्म लेता है। पर प्रश्न करता है, क्वेश्चन प्रश्नकर्ता ने पूछा, पर गीता में तो हम पढ़ते हैं, कृष्ण गीता में खुद लिखते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है वहां, अभ्युत्थान के जगह अभ्युत्थान लिखा है। अगर ज्यादा किसी आम व्यक्ति को पूछे ना, हिंदू व्यक्ति को जो गीता पढ़ता है, उसको कोई श्लोक याद हो ना हो, ये श्लोक जरूर याद होगा। अगर वो एक श्लोक याद कर रखा है तो वो यही श्लोक होगा, अगर दूसरा श्लोक है तो और कुछ और कुछ मिल जाएगा, पर पहला श्लोक यही है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विजय होता है, अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को जन्म लेता रहूंगा, अपने आप को पैदा करता रहता हूं। Whenever there is decay of virtue, I take my birth. What is your answer to this? गीता में कृष्ण ने कहा है, How can you deny it? Answer. Being opposed to the Veda, it cannot be held to be an authority. भारतीय या हिंदू शास्त्र परंपरा में एक पद्धति रही है, जब भी contradiction हो शास्त्रों में एक दूसरे में, तो श्रुति प्रमाण, जब आप जाते हैं ना अच्छे ज्ञानियों के पास प्रवचन सुनने, तो वो श्रुति प्रमाण देते हैं, वेद के, उपनिषदों के प्रमाण देते हैं। इसका मतलब यही है कि जब भी कंट्रडिक्शन हो, कहीं ना कहीं तो आप अथॉरिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो वेद और वेद वैदिक शास्त्रों में अगर नहीं है या उसके उल्टा है, तो हम नहीं मान सकते। श्री कृष्ण बीइंग वेरी वर्चुअस एंड बीइंग एक्सट्रीमली एंग्शियस टू फर्दर द कॉज ऑफ राइटसनेस माइट हैव विश्ड दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइटस एंड डिस्ट्रॉय द विकेड ही कुड लाइक टू बी बर्न अगेन एंड अगेन एट डिफरेंट टाइम्स. इस श्लोक में कोई गड़बड़ी नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या है कि हमें जिस तरह के सिखाया गया, जिस तरह के अर्थों के साथ हमें जोड़ने के लिए मजबूर किया गया, गड़बड़ी वहीं पर है. जब भगत सिंह या शहीद लोग देश की आजादी के लिए फांसी चढ़ रहे थे व मर रहे थे, तो उन्होंने अपनी भाषा में जो बोला और कृष्ण महाभारत की लड़ाई के मैदान में जिस भाषा में बोला, दोनों को मिला के देखें बात एक ही है. भगत सिंह वगैरह शहीद क्या बोलते हैं? अगर भगवान है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जब भी जन्म दे इसी धरती पर दे और इन्हें अपने देश की आजादी पाने के लिए, इन अंग्रेजों को हटाने के लिए मैं बार बार पैदा होना चाहता हूं, इन गद्दारों को मारना चाहता हूं. कोई भी एक अच्छा दिल का इंसान यही स्टेटमेंट देता है. जब भी उसको पाप बर्दाश्त नहीं होता, जब भी उसको धर्म का नाश देखता हुआ उसके दिल तड़पता है, बहुत सेंसिटिव व्यक्ति, इमोशनल व्यक्ति हो, बहुत प्योर और वर्चुअस पर्सन हो, उसका यही स्टेटमेंट होता है कि जब भी मौका मिले मैं यही बार बार जन्म लूं यही काम करने के लिए. यह स्वाभाविक उद्गार है. कृष्ण भी इसी तरह के महान है, योगी है, धर्म को घटते हुए देख नहीं सकते, अधर्म के विनाश उनके लिए उनके दिल को तड़पा देता है. कृष्ण और अर्जुन और कर्ण की लड़ाई हो रही है, तो कर्ण के रथ की पहिया जो व्हील है वो जमीन में धंस जाता है और जिसके कारण कर्ण लड़ नहीं पाता है, नीचे गिर जाता है. तो तभी कृष्ण अर्जुन को कहते हैं यही मौका है, कर्ण पर बाण चलाओ, क्योंकि कृष्ण को पता था कि कर्ण बहुत वीर हैं और उनको जीतना बड़ा मुश्किल काम है, तो यही चांस है कि उसको मार सकते हो. अर्जुन थोड़ा परेशान हो रहा है क्योंकि ये इट्स अगेंस्ट द रूल ऑफ वॉर, युद्ध नियम के खिलाफ है कि कोई आपसे नीचे हो तो आप उसको मार नहीं सकते हो, लड़ नहीं सकते हो. तो कृष्ण उसको समझाते हैं, कर्ण ने ये सुना और बोला तुम कितना कुटिल हो, पापी हो, क्यों अर्जुन को भड़काते हो कि ये बुरा काम करने के लिए अधर्म है. तो तब कृष्ण कर्ण को बोलते हैं, सुनिए उनके दिल की दर्द को कृष्ण के, तुम्हें अब याद आता है धर्म की बचाने की, तब तेरा धर्म कहां था जब तुम्हारे सामने द्रौपदी को नंगी कर किया जा रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहां था जब भीम को जहर खिला रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहां था जब लाक्षागृह में पांडवों को रख करके आग लगा रहे थे तुम लोग, तब तुम्हारा धर्म कहां था जब अभी अभी ताजा ताजा तुम साथ साथ वीर मिलकर के एक निहत्ते छोटे से बच्चे अभिमन्यु को मार रहे थे. अब तुझे धर्म की याद आती है, अधर्मी हमेशा धर्म का सहारा लेता है अपने को बचाने के लिए. अर्जुन तुम्हें कर्ण से धर्म का उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है, ये अधर्मी है, ये हमेशा अधर्म को बढ़ावा देना चाहता है, आज भी धर्म का नाम लेकर के अधर्म को ही बढ़ावा देगा, उसको मारना ही धर्म है, तुम मारो. जब आपके अंदर वो तड़प हो ना, तो पब्लिक शायद आपको समझ ना पाए कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, पर आपका तड़प आप ही समझ सकते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है. धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना, बार बार पैदा होने की जरूरत पड़े तो मैं राजी हूं, मुझे धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करना है. इफ सच वॉज द केस देर इज नो हार्म इन इट, बिकॉज व्हाट एवर द ग्रेट मैन पोजेस बॉडी माइंड वेल्थ आर मीन्ट ऑफ द बेनिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड. संस्कृत में नीति शास्त्र में बड़ा एक श्लोक है, परोपकाराय सताम विभूतयः, जो सत्य लोग, सच्चे लोग, जो सज्जन लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनकी, उनके पास जो कुछ भी ऐश्वर्य होता है, वो धन हो, बल हो, शरीर हो, मन हो, वो हमेशा दूसरों के लिए न्यौछावर करने के लिए होता है। इसीलिए कृष्ण उसी उसी महानता की कैटेगरी में आता है। बट स्टिल इवन देन लॉर्ड कृष्ण कैन नॉट बी गॉड। ये स्वामी जी का कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है, अपार सम्मान के साथ भी ये सत्य बोलने में हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए कि कृष्ण को ईश्वर नहीं थे, क्योंकि ईश्वर की जो परिभाषा है, जो संसार को बनाता है, जिसने सूरज बनाया, चांद बनाया, करोड़ों करोड़ों तारों को बनाया, इस प्लैनेट्स को ऐसे ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस जिसने प्लैनेट बनाया, आपके हमारे अंदर की शरीर की स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर को बनाया, दुनिया को बनाता है, पालता है, पोसता है, वो कोई ह्यूमन बींग हो ही नहीं सकता। एक इंसान कितना भी महान हो, कितना भी महान हो जाए, वो उस ईश्वर के बराबर हो ही नहीं सकता जो इस संसार को बनाता है, बिगाड़ता है, पालता है, पोसता है, जिसके कारण संसार में हर व्यवस्था चलती है, वो हो ही नहीं सकता। इफ दिस बी द केस, हाउ डू पीपल से दैट देर आर 24 इनकार्नेशंस ऑफ गॉड, 24 अवतार हैं। वैसे दशावतार प्रसिद्ध हुआ, जो 10 अवतार आप लोग फेमस जानते हैं, वैसे पुराणों में 24 अवतारों की बात होती है, और हर हर देवताओं के अलग अलग अवतार है, शिव के भी अलग अवतार, विष्णु के, दुर्गा के, पर क्योंकि वैष्णव धर्म ज्यादा पॉपुलर हुआ इसीलिए विष्णु के अवतार के बारे में आप लोग ज्यादा जानते हैं, मानते हैं, बाकी शिव लोगों, शिव दुर्गा वगैरह की जो भक्त हैं वो उतने ज्यादा पॉपुलराइज नहीं कर पाए अपने अपने देवताओं को, इसीलिए आज उनको आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि वैष्णव प्रचारक बहुत काफी फोर्सफुली प्रचार किया, इसीलिए आज आप अपना करके बैठे हो, तो वो तो जो जितना प्रोपेगेट करेगा लोग उतने ही अपने समझ के बैठ जाएंगे। वैसे सभी देवताओं के अलग अलग अवतार हैं, तो 24 अवतार हमने सुना है। दशावतार जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, कभी जयदेव के कारण, जो दशावतार स्तोत्र के कारण भारतवर्ष में ज्यादा पॉपुलर हुआ। पुराणों में अलग अलग अवतारों की संख्या है, पर 24 अवतार एक नॉर्मल अवतारों में गिना जाता है। तो वो सच है कि गलत है? फ्रॉम वांट ऑफ नॉलेज ऑफ द वेदाज, फ्रॉम बींग लीड अस्ट्रे बाय द सेक्टेरियंस एंड बींग देमसेल्व्स अनएजुकेटेड, people are involved in that this kind of ignorance. Therefore, it is no wonder that they believe in it and say such false things and also do wrong things. ये false thing है, ये पहला statement है, तो लोग मानते क्यों है? क्योंकि जब व्यक्ति जानने के लिए इच्छा करके गुरु के पास जाता है, ज्ञानी के पास जाता है, पंडित के पास जाता है, पुरोहित के पास जाता है, बताओ भगवान के बारे में कुछ बताओ, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है बताओ, तो जो पंडित बोलता है लोग वही सुनते हैं, वही मानकर चल बैठते हैं। असली बात है कि पंडित ने क्या पढ़ा है? पंडित ने तो लोगों को यह भी बताया कि पति के मरने के साथ साथ स्त्री को भी आग में कूद के मरनी चाहिए, तो हमने सती प्रथा भी पालते रहे, वो कानून बना, कठोर कानून बना, तब जबरदस्ती बंद करना पड़ा। आज भी लोग चोरे छुपे औरत को उठा करके फेंक देते हैं आग के अंदर बहुत सारे राज्यों में। ये भी पंडित बोलते रहे कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, और हम मानते रहे। हम ये भी मानते रहे कि इंसान के नाम पर स्त्री जो है वो बड़े छोटे कैटेगरी की है, सेकेंडरी भी नहीं, थर्ड फोर्थ कैटेगरी के है। आज भी हम मानते जा रहे हैं और हजारों सालों तक हम मानते रहे, स्त्रियों को इंसान कभी समझा ही नहीं है। यह भी पंडितों ने ही समझाया, शास्त्रों का नाम लेकर के पंडितों ने यह भी समझाया, ये इंसान इंसान कहने लायक नहीं क्योंकि वो छोटे जात में पैदा हुआ है, ये भी शास्त्र में लिखा है। इसको कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर हालत के साथ रहने की जरूरत है, कुत्ता छू ले तो पाप ना लगे पर वो छू ले तो बहुत पाप हो जाए, जबकि वो इंसान, ये भी शास्त्रों में लिखा है। कहने का मतलब है आम आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, होता था, और जब वो शास्त्र समझने के लिए पंडित या गुरु या आचार्य के पास जाता था, उनकी जिस तरह का जितना ज्ञान है या जो बताना चाहते हैं वहीं से ज्ञान फैला। अगर व्यक्ति सेक्टेरियन है तो वो अपना सेक्टेरियन व्यू बांटता है। तो जब देश में सांप्रदायिक विचार फैलने लगे, लोगों को ज्ञान की तलाश हो, आज भी आप लोग तलाशते हो, अलग अलग मंदिरों में जाते हो, अलग अलग प्रवचन सुनते हो, अलग अलग जगह सुनते हो, कहीं कुछ अच्छी चीज मिल जाए लेने के लिए आप कोशिश करते हो, पर जरूरी नहीं कि हर जगह अच्छी चीज मिले। बाहर जो आप रोज जो सुनते हो सही है, इसीलिए खुद का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और भारतवर्ष में करोड़ों अरबों लोग हजारों सालों तक अनपढ़ रहे। आज भी हमारे देश में अगर आप देखें, बहुत सारे लोग हमें सवाल पूछते हैं कि भाई जैसे आजकल वो कहते हैं कि देखो हमारे प्राचीन भारत में साइंस बहुत डेवलप्ड था, हमने वो विमान बनाया, वो बनाया, वो सब किया, मैथमेटिक्स था, सब कुछ था। तो लोग सवाल पूछते हैं, अगर आपके पास बहुत कुछ था तो फिर कहां गया, क्यों लोगों ने इसको आपके वहां किसी को पता नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इस पर कोई आगे की कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अगर था तो क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ का जो रीजन है वही रीजन हमारे धर्म के साथ भी है कि इतने ऊंचे धर्म की विचार था तो लोग इस तरह के उठपटांग धर्म के विचार में क्यों फंसे। उन दोनों का एक ही आंसर है। आज भी भारत में 40% से ज्यादा लोग निरक्षर है, इलिटरेट है, मतलब सरकारी आंकड़े में तो 35-38% है, पर 45% से मोर पीपल अभी भी इलिटरेट है। इलिटरेट का मतलब जिनको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, और जिनको हम लिटरेट कहते हैं करीब करीब 55 या 60% या 65 जो भी आप माने, वो लिटरेट पर्सन, मतलब अगर उनको ये का ख ग घ आ गया, दस्तखत करना आ गया, तो लिटरेट है। जब देश आजाद हुआ 1947 के आसपास, जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश की पढ़े लिखे मतलब मैं हायर एजुकेटेड की बात नहीं कर रहा हूं, आप जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़े लिखे मतलब जिसको बस अपनी मातृभाषा पढ़ना आता है, किताब वो धीरे धीरे पढ़ सकता है या दस्तखत कर सकता है, ऐसे लिटरेट लोगों की संख्या सिर्फ 35% के करीब करीब था, मतलब 35% था, मतलब 65% अनपढ़ थे। अगर आप 100 साल पुराना चला जाए, 1901 की बात करें या 1850 की बात करें, तो आप देखेंगे 3%, 4%, 5% लोग पढ़े लिखे थे। अगर आप 200 साल पहले और चले जाए तो 0.00% लोग पढ़े लिखे थे। क्यों अनपढ़ थे उसकी हिस्ट्री कभी बाद में बताएंगे, पर अनपढ़ थे, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। और अनपढ़ लोग हजारों सालों से, जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, मजदूर करता है, पढ़ा लिख नहीं है, वो कहां से वो शास्त्रों को समझेगा जानेगा। तो जो लिमिटेड सोर्स था, वो लिमिटेड सोर्स में भी बहुत सारे करप्ट सोर्स थे, इसीलिए हमारे यहां इतने ऊंचे विचारों के शास्त्र होने के बावजूद भी हमारे तक वो नॉलेज नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बीच में हजारों सालों तक हम एक अनपढ़ सोसाइटी के अंग बने रहे। आज हम पढ़े लिखे हो गए, हो सकता है हमारे माँ बाप पढ़े लिखे थे, हो सकता है आपकी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक पढ़े लिखे थे, पर आपकी 5वीं पीढ़ी अनपढ़ था या आपकी 6ठी पीढ़ी अनपढ़ था, और सिर्फ पीढ़ी नहीं सैकड़ों पीढ़ी तक अनपढ़ थे। अब हम प्रोफेशनली पढ़े लिखे हो गए, पर रिलीजन के मामले में हम वही फॉलो करते हैं जो हमारे पेरेंट्स करते थे, उनके पेरेंट्स करते थे, या जो पुरोहित या जो प्रीस्ट है, जो पंडित है, जो वो करते आ रहे, वही हम मानते रहते हैं, क्योंकि हमने कुछ जाना नहीं सुना नहीं, और हम पढ़े लिखे हुए, पर हमारे अंदर एक भला मानस है कि वी वांट टू प्रिजर्व आवर कल्चर, वांट टू सेव आवर रिलीजियन, वांट टू फॉलो आवर रिलीजियन। तो फिर हमें इतना पता नहीं है, पर हमारे अंदर एक इच्छा है कि जो हमारा धर्म है, जो संस्कृति है, जो विचार है, वो बना रहे। तो इसीलिए जो हमारे पंडित हमें बताते हैं, हमारे पेरेंट्स बताते हैं, हम उसी को फॉलो करके जाते हैं, क्योंकि हमें कभी मौका नहीं मिला इनके अच्छे या बुरे पक्ष को समझने के लिए। और यही परिणाम है कि जितनी तरह की इग्नोरेंस हमारे धर्म के नाम पर फैले वो उसका मूल कारण यही है कि शास्त्रों को समझने के लिए जब लोग आते हैं तो सामने जिस तरह का सोर्स मिलता है तो उसी तरह का ज्ञान होता है। उसी के कारण ये अवतारों की ज्यादा प्रचार हमारे देश में हुआ। हाउ कुड सच विकेड मैन एज रावण एंड कंस बी डिस्ट्रॉयड इफ गॉड डिडंट इनकार्नेट। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अगर भगवान अवतार नहीं लेता तो फिर ये जो कंस, रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु वगैरह वगैरह जो इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, फिर ये मरते कैसे? फिर कल्कि कैसे आएगा? जब पाप बढ़ रहे हैं फिर कल्कि भी तो आना, कल्कि अवतार की भी तो आना भी तो है, फिर कैसे होगा? तो भगवान नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये बदमाशों को, पापियों का संहार फिर कौन करेगा? फर्स्टली, Whosoever is born is sure to die. नंबर वन, जो पैदा होता है उसको मरना होता है। वो राक्षस हो तो भी मरेगा, कोई ना मारे तो भी अपने आप मर जाएगा, कैंसर में मर जाएगा, बीमारी होकर मर जाएगा, एक्सीडेंट होकर मरेगा या लड़ाई करके मरेगा। भगवान मारे ना मारे उसके सिस्टम में उसको मरना ही मरना है। सेकेंडली, when creation, sustenance and dissolution of the whole universe are doable by God without being incarnated and without the help of anyone, what are Kansa and Ravana when compared with the Almighty God? अगर परमात्मा भगवान या ईश्वर इतने बड़े बड़े संसार को, सूरज चांद जैसे, ये सूरज संसार में कितने हैं जी? बोले ट्रिलियंस, ट्रिलियंस में भी ट्रिलियंस लगाएंगे उससे भी ज्यादा। कितने प्लैनेट्स हैं जी आपकी धरती के तरह? मतलब आप काउंट नहीं सकते। आप वन में जीरो लगाते चलिए डाउनटाउन तक, तब भी शायद कम पड़ेगा कि ज्यादा पड़ेगा पता नहीं, उतना आप पता नहीं, क्योंकि आप भी नहीं बता सकते, इसीलिए मैं ज्यादा बोल दूं कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि कितने प्लैनेट हैं। कितने सारे प्लैनेट्स हैं जिसमें लिविंग बींग रहते हैं जैसे धरती पर हम रहते? इतने बड़े संसार को अगर हम मानते हैं कि ईश्वर संसार को बनाने वाला है, पालने वाला है, संहार करने वाला, जो ईश्वर इतने बड़े बड़े सूरज चांद को बनाता है और उनको मार भी सकता है, सुख जाते हैं? कितने सारे स्टार्स होते हैं जो डेड हो चुके हैं? एंड हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इज गोइंग टू बी डाई? दे आर डाइंग, मर रहे, पैदा हो रहे। आपका सूर्य जो अभी थोड़ा जवान है, अभी तो जवानी में भी नहीं है, अभी तो वो टीनेज पर है, अभी काफी जिएगा। तो आपकी धरती भी जिस पर है ये भी अभी अभी वो जवानी में भी नहीं आई, अभी काफी लंबा समय पड़ा है धरती का। जो सूरज, तार, समुद्र, आकाश को बनाता है, लोगों के पाप पुण्यों का फल देता है, ये अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब उन्हीं के देन है जिनके कारण ये सब होता है उसी सिस्टम में। ये छोटे छोटे कंस, रावण हमसे लंबे चौड़े होंगे भाई। आप 6 फुट के होंगे तो 8 फुट के होंगे, वो 8 फुट 7 फुट के आदमी को, राक्षस जिसको आप कहते हैं, बदमाश को मारने के लिए उस भगवान की, उनकी क्या औकात है कि भगवान उनको मारने के लिए इतना कष्ट सह करके पैदा होना पड़े? उसकी बीवी को भी कोई उठा ले आए, वो जंगल में रोता फिरता फिरे। बोला जो सूरज चांद को बना सकता है वो ये टूटके रावण कंस को नहीं मार सकता, उसको मारने के लिए पैदा लेना पड़ता है उसको। उनकी क्या औकात है इन छोटे छोटे राक्षसों के उनके सामने कि उनको पैदा होना पड़ता है? He being omnipresent also pervaded the bodies of Kansa and Ravana. अगर आप मानते हो कि ईश्वर सर्वव्यापक है तो कंस और रावण के अंदर भी तो हो ही है, तो वहीं से उनके पेट ही खराब कर देता, उनके अंदर बीमारी पैदा कर सकता है। पर ये सब ना करके पैदा होना पड़ा क्यों मारने के लिए? मतलब कंस रावण इतने ताकतवर हुए कि भगवान को भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है अपने सिस्टम के साथ, एक ही क्षण में मार सकता है जी। कितने बड़े बड़े लोगों को हमने देखा जो दावा करते हैं मैं अमुक के द्वारा मैं 400 साल जीऊंगा, 200 साल जीऊंगा, स्टेज से बोल करके उड़ते हैं और नीचे हार्ट अटैक में मरे पड़े मिलते हैं। तो कंस रावण हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप वैसे ही मर जाएंगे, अंदर भगवान चाहे। What shall we then call such a man but a fool who says that the Supreme Spirit, who possessed of infinite power, infinite attributes, infinite activity, takes on a human form and becomes subject to births and deaths in order to kill an insignificant creature? मतलब आपके अमेरिका में कोई बहुत बड़ा माफिया सरदार है, देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा, ये कंस रावणों को देख करके बहुत ज्यादा अचंभित मत होइए। ये कंस रावण वगैरह से बड़े बड़े आजकल के जो माफिया सरदार है ना, वो उनसे ज्यादा खतरनाक हैं, वो उनसे ज्यादा पावरफुल हैं, वो ज्यादा लोगों को मारते हैं, ज्यादा ये जो ड्रग माफिया होते हैं, ये जो सेक्स रैकेट के माफिया होते हैं, ये जो किराए पर शूट करने वाले माफिया होते हैं, आप देखिए वो कितने खतरनाक होते हैं, कितने लाखों लाखों लोगों को मार डालते हैं। कंस रावण तो इतने भी नहीं किया, रावण ने तो बेचारे किसी की बीवी को भी हड़पा भी, तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, उसको रखा, बोला कि मान जाओ, उसको मनाने की कोशिश करता रहा बेचारा। और आजकल ये जो सो कॉल्ड रेपिस्ट है, वो तो रावण से भयानक भयानक है, तो रेप करने के बाद क्या क्या उसके साथ हरकत करते हैं आप, तो ये मत सोचिए कि रावण बहुत ज्यादा खतरनाक था, आजकल उससे ज्यादा खतरनाक लोग आपको मिलेंगे। तो ये छोटे मोटे राक्षसों को, बदमाशों को मारने के लिए भगवान जाए। वैसे आजकल पता नहीं क्यों अवतार नहीं लेता है, वैसे नहीं लेता ऐसा नहीं, आजकल ज्यादातर जो अवतार लेते हैं वो बाबाओं के रूप में। और ये पता नहीं ये कौन सा अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए बाबा लोग अवतार लेकर पैदा हुए हैं भगवान के, ये समझ में नहीं आता है, सिवाय पैसा कमाने और चेला बनाने के अलावा किस अधर्मी का इन्होंने विनाश किया। ज्यादातर भगवान जो अवतार लिए वो अधर्मियों को मारा है, उसको क्षत्रिय बनकर आए, पर ये बाबा बन के पहली बार भारत में आ रहे हैं भारत में। और आज के तारीख में भारत में 4000 से ज्यादा भगवान घूम रहे हैं, जो अपने आप को ये घोषित कर रखे हैं कि हम भगवान के अवतार हैं, जिंदा घूम रहे, अपनी पत्नियों के बच्चों के साथ भी घूम रहे, कुछ तो जेल में भी घूम रहे हैं, और अब भी दावा करते हैं कि हम भगवान हैं। और उनके शिष्य ये दावा करने में नहीं हिचकिचाते हैं कि भगवान जो हमारे बाबा जो जेल में है वो तो उनकी लीला है, क्या औकात है इंडिया गवर्नमेंट का कि उनको जेल में डाल सके। तो बाबा ने सोचा कि मैं थोड़ा लीला करूं, तो इसीलिए वो जेल गए हैं ऐसे हरकत करके, तो भगवान का लीला है। तो ईश्वर छोटे छोटे दुष्ट पापियों को मारने के लिए जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, पैदा लेता है। एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज बताएं, ज्यादातर जो हमारे अवतार हुए हैं वो यूपी में हुए हैं जी, उत्तर प्रदेश में। और श्लोक क्या कहता है जरा ध्यान से सुनिए यूपी वाले, थोड़े श्लोक आपका गीता में कहता है, जहां जहां पाप बहुत ज्यादा बढ़ता है धर्म घटता है, मैं वहीं पैदा होता हूं। मतलब ये यूपी सबसे बड़ा पाप का राज्य रहा क्या, मथुरा वहीं, अयोध्या वहीं, सब कुछ वहीं पर। और एक बड़े मजेदार बात आपको बताएं, हमारे लोग बोलते हैं कि देखो कली युग जो है सबसे पापी युग है, यहां बहुत पाप होता है, ऐसा बोलते हैं। ये सच नहीं है जी, सत्य युग में केवल सत्य ही सत्य था, वहां चारों पाप फोर क्वार्टर्स बिल्कुल सत्य था, एक पाद कम हुआ त्रेता में, वहां थ्री क्वार्टर जो है वो सत्य था और एक क्वार्टर पाप रहा। द्वापर में हाफ हाफ हो गए धर्म और अधर्म, कली युग में एक पद सिर्फ वन क्वार्टर धर्म है, थ्री क्वार्टर पाप है। अगर लॉजिक यही है कि धर्म की रक्षा और अधर्म की विनाश के लिए ईश्वर अवतार लेता है, तो सबसे ज्यादा अवतार किस कब होनी चाहिए, कली युग में। सबसे बिल्कुल अवतार कब नहीं होना चाहिए, सत्य युग में। पर एक इंटरेस्टिंग बात पता है, हम लोग तो धर्म के नाम पर लॉजिक भी नहीं लगाते हैं ना, सार ज्यादातर आपके अवतार सत्य युग में मिलते हैं, जहां एक एक पैसे का कोई धर्म अधर्म था ही नहीं। वो वामन हो, वो कुर्म हो, कच्छप हो, जो भी
मत्स्यावतार हो, वरावतार हो, वामनावतार हो, सब सत्य युग में। त्रेता युग में तो सिर्फ वन क्वार्टर था, है ना, वहां दो दो अवतार हो गए। और अपने महाभारत में दो क्वार्टर पाप था, दो क्वार्टर ये था, तो उस समय एक ही हुए कृष्ण। तो कभी कभी थोड़ी बहुत अपने दिमाग लगाने की जरूरत है। इफ समवन सेज दैट गॉड इनकार्नेट्स फॉर द सल, अच्छा वो लॉजिक हो गया कि भाई दुष्टों को मारने के लिए ईश्वर को अवतार लेने की जरूरत नहीं है। वैसे बहुत सारे ईश्वर के पास तरकीब है, वो किसी को भी मार सकता है। एक बार वो अर्थ का किया, ये जो आजकल आता है बड़े भयानक तूफान आते हैं, वो पूरी पूरी मथुरा को वैसे ही उड़ा लेता। कितनी बार मथुरा डूब चुकी है, बर्बाद हो चुका है, ऐसा नहीं है तो कंस भी डूब जाता है, ऐसी क्या बात है। अब अगला लॉजिक है जो लोग देते हैं कि ईश्वर भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लेता है। अब देखिए, इफ समवन सेज दैट गॉड इनकार्नेट्स फॉर द सल्वेशन ऑफ हिज डिवोटीज, देन टू इट कुड नॉट बी ट्रू। व्हाई? फॉर इफ द डिवोटीज कंडक्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस ऑफ द गॉड, ही इज पावरफुल एनफ टू सेव देम। भक्तों की कल्याण के लिए अवतार लेने की क्या जरूरत है? भक्त अगर ईश्वर की व्यवस्था में चलें, व्यवस्था मतलब जो भी सत्य धर्म न्याय अच्छी अच्छे रास्ते पर चले, भक्तिभाव से जुड़े, अच्छा व्यवचरित्र शुद्ध करे, मन शुद्ध करे, तो अपने आप वैसे ही उनको मुक्ति मिलने वाली है। अवतार लेने की क्या जरूरत है? मुक्ति दिलाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए मुक्ति अवतार लेने की क्या जरूरत है? डू यू थिंक दैट टू किल ए कंस रावण और द लिफ्टिंग ऑफ ए माउंटेन लाइक गोवर्धन आर मोर डिफिकल्ट टास्क देन द क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिसोल्यूशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट्स? ये थोड़ी सी दिमाग लगाने की बात है ना। हम भगवान की क्या गुणगान करते हैं? जिसने गोवर्धन अपने अंगुलियों में उठा लिया, पूरे दिन भर तो साल भर तो यही प्रवचन चलता है भगवान के नाम पर मंदिरों में। सुनो भगवान की महिमा, उसने गोवर्धन पहाड़ को अपनी ये लिटिल फिंगर के ऊपर उठा लिया। मतलब जो सूरज चांद बना सकता है, बिगाड़ सकता है, ये छोटा सा माउंटेन उठाना बड़ी बात हो गई उसके लिए। देखो उसने कंस और रावण को मारा, जो पूरी की पूरी यूनिवर्स को डिसॉल्व कर सकता है, वो कंस रावण को मारना बड़ी बात हो गई उसके लिए। If one looks at God's work in nature, he must admit that there is none equal to God. None there shall ever be. Na bhuto na bhavishyati. मैं बार बार इस बात पर चर्चा करता हूं। ईश्वर की अगर समझना है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की सृष्टि कैसी है, आप तो या तो ये यूनिवर्स कैसे बना, ये क्या है जरूर देखो। अगर ये कुछ नहीं समझ में आता है तो खुद के बारे में देखो। आपका शरीर रचना कैसी है, आपकी आंखें, आपके नाक, आपके मुंह, आपके दांत, आपके अंदर के नर्व सिस्टम, आपके ब्रेन, आपके अंगुलियां, एक एक चीज को देखो। इसको किसने बनाया, किसने ये स्ट्रक्चर बनाया, किसने इसको फॉर्मेट बनाया, ये बॉडी जो बना है, ये धरती को देखो, हर चीज को देखो, ये जो इकोलॉजी को समझो, कैसे ये जो साइकिल किसने बनाया, एक एक चीज आपको मिसमराइज्ड करेगा, एक एक चीज के अंदर आपको मिरेकल दिखेगा, ये बाबा ईश्वर की चमत्कार दिखेगा। तो समझ में आएगा कि जिसको आप ईश्वर कहते हो उसके जैसा ना कोई हो सकता है, ना हुआ है, ना हो सकेगा। वो आपके शरीर के एक टिश्यू को भी बनाने वाला दुनिया में मुश्किल है। वो उस ईश्वर की व्यवस्था है जो आपके अंदर, वो बॉडी के अंदर वो टिश्यूज बनते हैं, बिगड़ते हैं। इसीलिए ये दावा करना है कोई भी महान से महान व्यक्ति ईश्वर है, असंभव है, असंभव है। वो परमात्मा जो सारा संसार का करता है, धरता है, पालन करता है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कभी अकेले में बैठ के खुद के बारे में सोचो, आपका शरीर रचना, आपकी फिजियोलॉजी, आपके शरीर कैसे बना है, उतने में ही समझ में आ जाएगा। हर पल आप मेस्मराइज होते रहेंगे, हर पल आप अम्यूज होते रहेंगे, हर पल आप मिरेकल को फेस करते रहेंगे। आपकी अंगुलियां कैसी, क्या है, कैसी बनी है, आपके नाखून, वो अंगुलियों के ऊपर नाखून, आपके शरीर के अंदर की सिस्टम देखिए, अब खाना खाते हैं देखिए आप फुर्तीवान हो जाते हैं, ये स्ट्रक्चर कैसे बना, किसने बनाया, आपके मां बाप ने नहीं बनाया, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, किसी ने तो बनाया, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। वो ईश्वर जो इतने संसार को इतने बारीकी से, इतने शटल फॉर्म से बनाता है, इतने ग्रॉस चीजों को बनाता है, उन सबको बिगाड़ता भी है, बर्बाद करता है, सब कुछ करता है, वो छोटे छोटे कार्यों के लिए नहीं है। क्योंकि समय हो चुका है, आगे की चर्चा फिर थोड़ी आगे बढ़ाएंगे। अवतार के बाद अगला प्रश्न नेक्स्ट टाइम भी चर्चा करेंगे, डज गॉड फॉरगिव द सिंस ऑफ हिज डिवोटीज आर नॉट। तो आज इसी बात के साथ यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार को भी जरूर आइए, अवतारों के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, क्योंकि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं बिल्कुल जो आपके दिल के अंदर है, आपके हृदय के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता होगा क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी से यही सुनते आ रहे हैं, यही समझते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत लगता होगा पंडित जी को जरूरत से ज्यादा नास्तिक होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने सवाल मुझे पूछ सकते हैं, आप मेरे से लिख करके या प्रश्न अलग से बात कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप हमारे शास्त्रों को ठीक, हमारे असल शास्त्रों को समझें, ईश्वर का व हर चीज का जो सही गुण धर्म स्वभाव है उसको जानने की कोशिश करें। क्या मानते हैं वो अलग बात है, पर हमारा काम है समझाना, इसीलिए हम ये काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को धैर्य के साथ सुनते हैं, आपके लिए बहुत बहुत